फिर इसी तरह आप देखिए रोजा, तीसरी चीज रोजों का वसीला। रोजा क्या है? आला दर्जे की इबादत है, बेहतरीन वसीला है। रिवायत है अबू उमामा से कि वो खुद अल्लाह के नबी के पास आए, कहा ऐसा कोई अमल बताइए कि जिसको करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आपने कहा कि रोजे रखा करो, क्योंकि इससे बेहतर इबादत कोई नहीं है। ये रिवायत निसाई की है 2223 नंबर की, यानी 2223 नंबर की। अब इस हदीस में अगर आप गौर करें, साहबी क्या चाहते हैं? जन्नत चाहते हैं ना। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नबी सल्लम के पास सहाबा ने जब भी आके सवाल किया, आपने आगे से कोई अमल ही बताया। आज के दौर का कोई बुजुर्ग जहन में लाए ना तो होता है ये वजीफा कर लो। आज लोग आके हमसे भी पूछे ना, बच्चा बीमार है कुछ बताएं, तो वो बता क्या चाहते हैं? एक टांग पे खड़े होके 101 बार या शाफी का वजीफा करो। मोस्टली आज के दौर में जिस तरह लोग वजीफे पूछते हैं ना, सहाबा करम अमल पूछते थे। और आज हमारे और सहाबा के अंदर फर्क ये बहुत बड़ी एक किस्म है कि हम बेअमल होकर सिर्फ जुबान की सर्विस चाहते हैं, कुछ तो पढ़ने को दे। जैसे किसी की बात हुई तो उन्होंने अपनी कोई बात की, कोई परेशानी थी, अच्छा आप मुझे बताएं कि मेरी बहू क्या पढ़े ना, तो मैंने कहा कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुआ करे। कहती वो तो सब ठीक है, वो तो वो पढ़ती है, और क्या करे, कोई वजीफा बताए इसको ना। अच्छा मैंने उसे कहा कि उसे कहे कि कुरान की तफसीर की क्लास लेनी शुरू कर दे। कहती वो सब ठीक है लेकिन वो वजीफा क्या करे, कोई लफ्ज दे उसको पढ़ने को। आप समझ रहे हैं ना, ये हमारा एक माइंड सेट है। सहाबा कराम रोजे रखने शुरू हो जाते थे, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब बंदे को अल्लाह से कोई काम पड़ जाए ना, रोजे पड़े होते हैं, लेकिन कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है तो कहते हैं कि रोजे रखने शुरू कर दो नफिल, कि अल्लाह तू मेरा काम कर दे, मैं रोजे रख रहा हूँ। ज्यादा नहीं कहते अल्लाह रखवाता, अल्लाह वो काम करा देता अगर वो हमारे हक में बेहतर है। हम आजमा नहीं सकते कि अब रोजे ही रखने शुरू कर दें इस बात पे कि अब हमारा ये काम हो जाए, लेकिन देखिए अपने पल्ले में कुछ तो रखें। फिर इसी तरह देखिए एक किस्म हज, जब हम हज पे जाते हैं, सच बताइए दुनिया में किसी ऐसे बंदे को जिसको इस्लाम की ये तालीमात ना बताओ, उसकी अकल में भी आता है जो कुछ हम हज में जाके करते हैं, इतना पैसा लगा के एक बंजर जगह पे जाके, और ना वहां भी बहुत बड़े बड़े वजीफे, ना दुआएं ना नमाजें, बस इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, बर्फात में चले जाओ, मीना में चले जाओ, ये वादी नमरा है, और इस मस्जिद में अगर इधर खड़े हो तो तुम्हारा हज हो जाएगा, इधर हो तो नहीं हो, यही कुछ है ना। चलो अब मगरिब हो रही है, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़नी, चलो मीना से मुजदलफा चलो, चल 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 के खड़े होके थक हार के वहां पहुंचे, कहा बस थोड़ी सी पढ़ो सो जाओ, खुले आसमान के नीचे रात को आप सो रहे। अकल में तो नहीं आता हज, ऐसे ही लगता है कि बस घर से भी घर हो रहे हैं। फिर सुबह अगले दिन उठे, चलो जी चलो तवाफ करने वहां, चलो चलो जी बाल काटने, कुर्बानी करनी है, यानी पूरा हज के जो चार पांच दिन है वो क्या है? अल्लाह के लिए। जब एक बंदा घर से भी घर हो अल्लाह के लिए हज करने निकलता है, तो वो कह सकता है कि अल्लाह मैं तेरे कहने पे आया हूं, मुझे ये अमल इसलिए करना है कि तुम मुझसे राजी हो। सही बुखारी की रिवायत है 1773, जिसका खुलासा क्या कि हज आला दर्जे की इबादत और बेहतरीन वसीला। आपने कभी को हज किया हो पहले, संभाल के रख ले, जब आप किसी मजबूरी मुश्किल में आए ना, फौरन याद कराएं, अल्लाह वो मैंने 2005 में आपके लिए हज किया था, आप मेरी उसके बदले में ये दुआ कबूल करें। फिर इसी तरह उमरा, वो भी इसी की किस्म है, क्योंकि इनफरादी इबादत है, सवाब होता है इसमें, दुआओं की कबूलियत, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। बुखारी की रिवायत 1773 में उमरे का भी जिक्र है। फिर इसी तरह एक और चीज जिसको हम आप बहुत अच्छी तरह अपने पास कर सकते हैं, जैसे वो मुझे पता है ये बात करते हुए क्या फील हो रहा है कि जैसे बैंक में कुछ मनी रख लें, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। डेबिट आपके पास होता है, क्रेडिट आप लेते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये सब नेकियां हमारा डेबिट है, हमने अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक के अकाउंट में ये चीजें रखी हुई है, डेबिट है। जब कोई मुश्किल आती है ना, किसी दिन कोई परेशानी आई, तो हमने इस डेबिट में से कुछ निकाल के अल्लाह को दिखाना है, और अल्लाह को बुरा नहीं लगता। इंसानों के लिए अगर हम कोई अच्छा काम करें और कभी हम उनको रिमाइंड करें तो रिमाइंड करते हैं ना, अच्छा जी आप आज एहसान जतला रही हैं कि आपने उसे मेरे बच्चे को पिक किया था। अल्लाह को जब आप बताते हैं ना कि अल्लाह मैंने आपके लिए ये काम किया था, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। हम जब भी कोई सदका दें, मिसाल है कि अब अगला हिस्सा क्या कि सदका देना, जब अल्लाह के लिए किसी को माल दिया होगा ना, रजा के लिए, अल्लाह के लिए पाकीजा माल, तो अल्लाह के लिए ये भी सदका है। बुखारी की रिवायत है 6023 नंबर की, कि अल्लाह की रजा के लिए खुश दिली के साथ पाकीजा माल उसकी राह में खर्च करना बेहतरीन और उम्दा वसीला है। जैसे हमारे यहाँ मुश्किल कोई आए, मजबूरी बस परेशानी हो, तो लोग सदका करते हैं ना, और ये भी एक वसीला ही बनता है। हदीस में आता है कि सदका बलाओं को टाल देता है, तो ये वसीला बन गया ना। कभी भी कोई आपको तकलीफ लगे, मुश्किल लगे कि आपके ऊपर आ रही है, कसरत से सदका दें। आपका सदका ऊपर जाएगा और वो तकलीफ जो ऊपर से नीचे आ रही थी उनकी आपस में फाइटिंग होगी। और सदका अगर स्ट्रांग है, अच्छी नीयत से दिया हुआ है, अच्छे दिल से दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो तकलीफ जो है वो पीछे चली जाएगी और आपको अल्लाह ताला उसकी वजह से बचा लेगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि और भी अमल है, जिहाद करते हैं। आप यहाँ आके बैठ गए, ये जिहाद नहीं है कि आप इस वक्त दीन सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हालांकि आपकी बहुत मसरूफियत का वक्त हो सकता है, हो सकता है आपके बच्चों की इस वक्त आपकी जरूरत हो। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे अल्लाह का दीन सीखना है ताकि मैं दूसरों को भी फायदा दे सकूं। ये भी वसीला है। बुखारी की रिवायत है 2790 नंबर की, कि अल्लाह की राह में जिहाद करना अफजल वसीला है, बेस्ट थिंग है, इसके जरिए अल्लाह के यहाँ आला मुकाम हासिल होता है। फिर इसी तरह इस्तिग़फ़ार का वसीला, सीख फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह ताला। इंसान से जो गुनाह और ज्यादतियां होती हैं उससे तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह ताला इससे बंदे को माफ कर देते हैं। सूरह इमरान में 135 में आता है कि अल्लाह हमने जो गुनाह किए थे हम तेरे खौफ से उनसे तौबा मांगते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए अपनी कोई ऐसी नेकी जो आपने कभी बहुत नफ्स पे काबू पाया हो, यानी आप इसमें नोट कीजिए सेल्फ कंट्रोल। इसके ऊपर से एक वाक्य सुनाऊंगी जो आप में से मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा, और नबी सल्लम इस वाक्य को बहुत दफा बयान करते थे कि तीन शख्स थे, बनी इसराइल का ये दौर था, किसी सफर में थे, जंगल से गुजरे, शदीद बारिश हुई, बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। जब वहां पनाह ली, थोड़ी देर में ऊपर से एक पत्थर आया, गार के मुंह पे रुक गया, यानी रास्ता बंद हो गया। अब वो अंदर फंसे हुए हैं, अब इतना भारी पत्थर धकेले तो कैसे धकेले। जब वहां से निकलने की कोशिश की तो निकल नहीं सकते, कोशिश पूरी की, अब क्या करें, फंस गए। उस वक्त उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब कोई और इंसान तो इधर है नहीं जो हमारी मदद करे, आओ हम वो नेकी याद करें जो हमने खालिस दिल के साथ अल्लाह के लिए की थी, तो अल्लाह शायद इधर से रास्ता बना दे। वहां फिर उन लोगों ने जो अपनी मुख्तलिफ नेकियां शेयर की थी वो आपको याद होंगी। पहले शख्स ने कहा कि अल्लाह तुझे पता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं बकरियां चराता हूँ, जब रात को बकरियों को लेके जाता हूँ तो सबसे पहले उनका दूध अपने माँ बाप को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देता हूँ, और मेरा ये अमल सिर्फ तेरे लिए है। अगर तुझे, अब यहाँ जुमले पे नोट कीजिएगा, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो तू मेरे लिए इस गार में से निकलने का रास्ता बना दे। और साथ ही उस शख्स ने फिर सुनाया अल्लाह को कि अल्लाह तुझे याद है उस दिन मैं गया अपने घर में कि माँ बाप को दूध दूँ, तो देखा तो माँ बाप सो गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनसे पहले मैं बच्चों को दूध दूँ, तो मैं सारी रात दूध का प्याला लेके खड़ा रहा कि जब वो खुद से उठेंगे, करवट लेंगे, वो पहले दूध पी लें, फिर मैं बच्चों को दूंगा। और इस तरह सारी रात गुजर गई। तो अल्लाह मैंने ये अमल तेरे लिए किया, अगर तुझे पसंद है तो रास्ता खोल दे। और रिवायात में आता कि ये कहने की देर थी, थोड़ा सा पत्थर से रख गया। देखिए कहनी आसान बात है, बचपन से यदि सुनते सुनाते आ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए हम कहते हैं वो ऐसे ही थोड़ा हिल गया होगा, हिला नहीं है। आपके इखलास और अपने ऊपर काबू पाना और अल्लाह से अजर की तलब पे नेकी करना, ये इतना बड़ा अमल है कि पत्थरों को हिला दे। खैर, दूसरे को कभी तुम सुनाओ, कभी तुमने भी कोई नेकी की हो। उसने कहा जी की है। एक शख्स मेरे पास मुलाजिम बन के आया, सारा दिन काम किया उसने, शाम को उसको तनख्वाह लेनी थी, तनख्वाह लिए पहले चला गया, उसके पैसे थे मेरे पास, अब वो आए ही नहीं, तो मैं क्या करूं। मैंने एक आध दिन वेट किया, कुछ नहीं, मैंने क्या किया, उसके पैसों की एक बकरी खरीद ली कि जब आएगा उसको दे दूंगा। अल्लाह का हुक्म ये हुआ कि वो तो नहीं आया, लेकिन उस बकरी ने बच्चा दे दिया, और होते होते उस बकरी के बहुत सारे बच्चे हो गए, रेवड़ बन गया। पता नहीं कितना अरसा गुजरा, साल गुजर गया होगा कितना, एक दिन वो शख्स आ गया, कहने लगा तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हारे पास काम किया था, फिर मैं पता नहीं कहीं बाहर चला गया, अब मैं वापस आया हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो कोई पैसे हैं तो दे दो। उसने कहा अच्छा हाँ, तुम वो रेवड़ जो पूरा बकरियों को वो तुम्हारा है वो ले जाओ। तो उसने कहा क्या बात है, मजाक कर रहे हो। उसने कहा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी उस एक बकरी से हुआ है, अब आप बताइए ये कोई छोटी बात है, आप किसी की तनख्वाह या हिस्सा ही दे दें तो बड़ी बात है, कहाँ इतना दिन। उसने कहा अच्छा, वो खुशी खुशी ले गया। फिर उसने कहा अल्लाह मैंने ये अमल सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो इस गार में से निकलने का रास्ता खोल दे, मैं इसको वसीला बना लिया ना, मुंह से कहे ना कहे वसीला तो बनाया ना। पत्थर और से रख गया। और फिर तीसरे शख्स की बारी आई, उसने कहा अल्लाह तुझे पता है मेरी चचा जद बहन है, मैं उससे मोहब्बत भी करता था और उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मैं उससे शादी भी करना चाहता था। एक दिन ऐसा मौका बन गया कि मैं उस पर पूरा काबू पा सकता था, मैं अपनी उसके साथ ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन तेरे खौफ से मैंने उसको छोड़ दिया कि तू मुझे पूछेगा। चल अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो इस घर में से रास्ता बना दे। तो हदीस में आता है कि पत्थर पूरे का पूरा लुढ़क के नीचे गया और वो घर से निकल आया। कई दफा इस मौजू पे सिर्फ एक हदीस में भी मैंने दर्ज दिया हुआ है कि देखें ये तीनों काम आसान नहीं है। आम हालात में नेकी करना बहुत आसान होता है, खुशी खुशी हम सब करते हैं। असल मुझे जो समझ आई है दीन की अभी तक, असल नेकी ही वो अल्लाह के यहां काबिल कबूल है जो आप मुश्किल हालात में करते हैं। अब आजमा के देख लें, आम हालात में तो हमें नेकियों की आदत ही हो जाती है ना। बस अब देखिए, अगर एक शख्स वॉक करता है इस सोच से कि मेरा वेट लूज हो जाए, तो उसके लिए वॉक करना कोई मुश्किल नहीं बल्कि एक अच्छी प्लस पॉइंट है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। एक शख्स है जिसको है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वो डाइटिंग करता है। तो बाजार डाइटिंग मुश्किल चीज है लेकिन उसको फायदे की लगेगी। तो जब हम जिस्मानी फायदे के लिए मुश्किल को आसान समझ लेते हैं, वॉक को और डाइटिंग को, दिस एंड दैट को, तो अल्लाह के लिए हम अगर दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, यूज्ड टू हो गए, नहीं पढ़ेंगे चैन ही नहीं आएगा, नींद ही नहीं आएगी, तो ये तो कोई बात ही ना हुई। वो नमाज जिस वक्त पढ़नी मुश्किल थी सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होंगे, वो बहुत बड़ी नेकी होगी। फिर आप देखिए कि उस शख्स ने जो मुलाजिम को दिया, आमतौर पर देखिए कि ये देना मुश्किल होता है, इसमें आपको सेल्फ कंट्रोल मिल रहा है? यानी उस शख्स ने अपने फायदे को पीछे डालकर दूसरे पे डाल दिया। उस औरत को छोड़ना नफ्स की कुर्बानी थी। हर वो अमल जो आप अल्लाह के लिए करें या अल्लाह के लिए छोड़ें, बड़े यकीन से संभालें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फिर इसी तरह एक और चीज जिसका वसीला आप दे सकते हैं, वो क्या है? दुरूद शरीफ। हदीस में आता है, अहमद तिर्मिजी और सही अल जामे की रिवायत है, कि जब इंसान दुआ मांगता है ना, तो उसके शुरू में दुरूद शरीफ पढ़े तो वो दुआ कबूल होगी। बाद जगह यहां तक आता है कि दुरूद शरीफ जो है ये दुआ के पर है, दुरूद पढ़कर दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। और बाज तो कहते हैं कि दुआ शुरू करें तो भी दुरूद और खत्म करें तो भी दुरूद, तो ये अल्लाह के कुर्ब का नतीजा बनेगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी फिर हमेशा ही दुरूद के साथ दुआ मांगे, तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हमेशा हम हाथ उठा के दुआएं मांगते हैं? ये तो कभी कभी मांगते हैं ना प्रोटोकॉल से, जिसको आप बड़े जैसे अभी हम के चले आए सब मिले में तो आए दुआ कर लेते हैं, हालांकि ये तो मौके हमेशा नहीं होते। चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह से मांगते हैं कि नहीं मांगते? एक ईमान वाले का तो अल्लाह के साथ ताल्लुक दिन रात का होता है, 24 घंटे का होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप प्रोटोकॉल के साथ हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, लेकिन आज जुमे का दिन है, आप कहते हैं कि मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और इसलिए पढ़ूंगी कि जुमे के दिन के साथ अच्छा लग रहा है मुझे, तो इससे मुझे अल्लाह का कुर्ब मिले, तो इंशाल्लाह तआला ये अल्लाह के कुर्ब का भी जरिया बनेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब का भी होगा। फिर इसी तरह एक और चीज जिसको वसीला बना सकते हैं, वो है कुरान मजीद। इसकी तिलावत आला तरीन वसीला, इसके वसीले से जो दुआ कीजिए वो कबूल होती है। हदीस में आता है कि जिस महफिल में कुरान पढ़ा जाता है, उस महफिल को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं और साहिबे कुरान यानी जो कुरान पढ़ता है उससे क्यामत के दिन कहा जाएगा इकरा वरका, कुरान पढ़ते जाओ और तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे, उसी तरह तरतील से पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे और आखिरी आयत तुम्हारी मंजिल होगी। या अबू दाऊद की रिवायत है 1464 नंबर की। तो कुरान पढ़ के आप कहते मैं दुआ मांगू क्या करूं, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल पड़ गई, आपको जो सूरत कुरान की आती ना आप हाथों टाइम पहले वो मांगे कि अल्लाह मैं ये मांग रही हूँ पढ़े। अल्लाह तेरा कलाम जिससे पहाड़ हिल जाए, जिससे मुर्दे कलाम करने लग जाए, जो पहाड़ पे उतरे तो वो लरस जाए, अल्लाह मैं उस कुरान के वसीले से तुझसे दुआ मांगती हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर अगली चीज इस वसीला जिसका आप और मैं पूरे यकीन से बना सकते हैं, वो अस्मौल हुस्ना है, अल्लाह तआला के नाम। अल्लाह तआला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह को उसके प्यारे नामों के साथ पुकारो। सूरह अल आराफ़ की आयत नंबर 180 में आता है कि वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है बस उसको उनके साथ पुकारो। अच्छा अल्लाह के नामों के साथ हम कैसे मांगे? जैसे अपने लफ्जों में आप कहें मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ कि तू मुझ पर रहम कर, ए गफूर मैं तुझे तेरे गफूर होने का वास्ता देती हूँ कि तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ठीक है। या जुल जलाल वल इकराम, तेरे जलाल और इकराम के वास्ते से, यानी जितनी भी शिद्दत के साथ आप अल्लाह के नाम बीच में मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। फिर एक और वसीला जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? मोमिन भाई की दुआ का वसीला। एक मोमिन जब दूसरे मोमिन को कहता है कि भाई मेरे लिए दुआ करो, मुझे अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करे, तो हदीस में आता है कि इसका दुआ करना जल्दी कबूल होगा। यानी गायब के लिए जब आप दुआ करते हैं ना किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। तिर्मिजी की रिवायत 3562 में इसका हुसन वाला है। तो खुद भी दूसरों के लिए दुआएं मांगा करें और दूसरों से मंगवाया करें, लेकिन याद रखें सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं करना, सबको कह दिया मेरे लिए दुआ करें, खुद नहीं करनी, ये नहीं दुरुस्त तरीका। इसका फिर एक और फलसफा है जो फिर कहीं बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब तक हम खुद अल्लाह से मांगते रहेंगे, दूसरे जब हमारे हक में दुआ मांगेंगे तो हमें उससे भी फायदा होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखिए कि गुनाहों से बचने का वसीला बना सकते हैं। इसी वाक्य में जो देखा, तीसरा वाक्य जो था, वो शख्स जिना कर सकता था ना, और उसको पसंद भी थी वो लड़की, किस वजह से उसने नहीं किया? अल्लाह के खौफ से। इसी तरह मरसद बिन मरसद का वाक्य आपने सुना होगा, चांदनी रातों में मदीना से मक्का आया कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ और जो वहां कैदी हैं उनको बचा के लाओ। चांदनी रात में ये सफर होते थे उस दौर में। वापस आया, देखा जो ही उसने दीवार फलांगी तो उधर से उसको एक साया आया नजर, पता चला उनाक, कहने लगे अहलन व सहलन या मरसद, यानी उसको वेलकम कर रही है, बेतिंदन लैलन, आओ आज रात मेरे साथ गुजारो। पहचान गए कि ये तो उनाक है, इनकी गर्लफ्रेंड थी इस्लाम लाने से पहले, लेकिन क्या कहा कि उनाक चली जाओ, अल्लाह ने जिना को हराम किया। जो ही उस औरत ने ये बात सुनी शोर मचा दिया, वो बस्ती वालों ये शख्स तुम्हारे कैदी लेके जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये शख्स उससे जिना कर सकते थे ना। वापस जाके इन्होंने नबी सल्लम से इजाजत तलब की कि क्या मैं उनाक से निकाह कर सकता हूं, तो कुरान की आयतें नाजिल हो गई कि अज़ानी ला यंकिह अल्ज़ान, और इसी तरह से लातन के उल मुशरिकात या तयुमिना के लिए भी ये लफ्ज आते हैं। तो क्या पता चला कि इसने गुनाह को छोड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दावत गुनाह मिली थी, वजीर खजाना की बीवी ने हजरत यूसुफ को दावत दी गुनाह की, तो यूसुफ ने किसके खौफ से उसको रिजेक्ट किया, अल्लाह के खौफ से किया। तो मैं और आप कुछ डेबिट ऐसा भी अपने नाम अमाल में रख सकते हैं, कभी कोई गुनाह करने को दिल चाहे, आपकी दोस्त कुछ कहती हैं, आपके बच्चे कुछ कहते हैं, मियां साहब कहते हैं या कोई भी कहता है, तो आप ना करें और लिख लें अपने पास, और जब कभी कोई दिल को पड़ी हुई बात हो ना, कोई बड़ी अल्लाह से दुआ मांगनी है, तो उसे कहें अल्लाह आपको याद है उसे मेरे मियां कह रहे थे चलो मूवी देखो और ये फिल्म देखो और ये चीज सुनो देखो, तो मैंने आपके खौफ से मैंने नहीं देखी, तो आज आप उसके वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी बच्ची को सेहत दे दे, मेरी माँ को सेहत दे दे, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। हम जब गुनाह छोड़ते हैं तो अल्लाह सुबहान ताला इंसान की दुआ सुन लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, इन सबको जमा करें तो इसमें क्या है कि हम अपने ईमान का और अपने नेक आमाल का वसीला बना सकते हैं।